وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. فقال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم الحمدللہ پورا ہوا، اور اس کی ترتیب سے اسی میں کی کوئی آیت منتخب کر کے کچھ دیر عرض معروض ہوتی رہی. آج چونکہ قرآن شریف کے پڑھنے کا سلسلہ نہیں تھا، تو پھر بھی ایک آیت کریمہ کا انتخاب ہوا ہے جو سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، اور پھر اس سے متعلق دو ایک آیتیں اور پڑھی گئی ہیں. اور یہ وہ آیت ہے جو سنت طریقے کے مطابق خطبے میں پڑھی جاتی ہے. اور خطبہ بھی کون سا؟ خطبہ نکاح. نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، تو اس وقت یہ پہلی آیت پڑھی اور سنی جاتی ہے. مگر عموماً نکاح کی مجلسوں میں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ اس پر کوئی بیان ہو، اور بیان بھی ہوتا ہے تو سینکڑوں باتیں ہوتی ہیں، بیان کرنے والا کس کس بات کو بیان کرے. تو پھر آج دل میں یہ بات آئی کہ اس موضوع پر کچھ عرض کروں. جب آپ کہیں گے یہاں تو کوئی شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی نکاح تو ہو نہیں رہا ہے، تو بھائی نہیں ہو رہا، لیکن ہو تو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا ہو تو بتاؤ. بہتوں کا ہو چکا ہے، تو ہو چکا ہے تو اسی کے اعتبار سے بیان ہے. جب یہ کام پہلے ہو جاتا ہے بیان بعد میں ہو جاتا ہے، یہ بیان پہلے ہوتا ہے بیان بعد میں ہوتا ہے، بیان پہلے ہوتا ہے اور کام بعد میں ہوتا ہے. تو بہرحال اس آیت سے متعلق بہت چند باتیں عرض کرنی ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن ایک دو واقعے ذہن میں آئے تو اس کو بھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مدنی طبع پیدا کیا، یعنی اس کے مزاج میں اکیلا پن نہیں ہے، وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کوئی نہ کوئی ساتھ ہو. اس کی فطرت میں، اس کی طبیعت میں یہ بات رکھی، حتیٰ کہ جب بابا آدم جنت میں تھے، کوئی نعمت ایسی نہیں تھی جس میں کوئی کمی ہو. جنت تو جنت ہے، کیا باغ و بہار ہے، دنیا میں کوئی مثال نہیں بیان کی جا سکتی. مگر وہاں بھی سب کچھ ہونے کے باوجود تنہائی محسوس کی. تب حق تعالیٰ شانہ نے ان کے لیے حضرت حوا کے انتظام فرمایا، اور بیوی عطا فرمائی، اور نکاح ہوا، اور پھر وہ ساتھ رہنے لگے تو طبیعت میں سکون پیدا ہوا، یکسوئی کے ساتھ آپس میں وہاں رہنے کا مزہ حاصل ہوا. پھر وہ تکوینی طور پر جو انتظام اللہ تعالیٰ کا وہ ظہور ہوا، اس کو بیان کرنا مقصود نہیں ہے. تو غرض یہ ہے کہ انسان کی طبیعت اور فطرت میں یہ نہیں ہے کہ وہ اکیلا پن زندگی گزارے. بالخصوص اسلام میں ایک ہی جملے میں اس طریق کی بالکل نفی کر دی گئی. فرمایا: لا رہبانیت فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں ہے. رہبانیت کیا؟ انسان شادی نہ کرے، نکاح نہ کرے، چرچ میں، معبد میں، अकेला पड़ा रहे, अकेली जिंदगी गुजारे, या इसी तरीके पर कोई मस्जिद में आ जाए चलने, बस मैं हमेशा मस्जिद ही में रहूँगा, मस्जिद की खिदमत करूँगा। तो खिदमत मस्जिद की तो अच्छी चीज़ है, लेकिन मस्जिद ही में पड़ा रहे और अपना कोई घर ना हो मुस्तकिल, कोई बीवी ना हो, बच्चे ना हो, इस्लाम ने मिजाज पैदा ही नहीं किया। इस्लाम कहता है भाई मस्जिद यकीनन अच्छी चीज़ है, मगर आप घर में रहो, बीवी बच्चों के साथ रहो, घर के कामकाज करो, सब कुछ के बाद फिर जितना वक्त बचता है अल्लाह ने कुछ अहकाम रखे, मस्जिद में जाके अदा करो, मस्जिद को आबाद करो। तो इंसान की तबीयत में अल्लाह ताला ने मिलने का मिजाज रखा है, उसी के मुताबिक जब इंसान एक ख़ास उम्र को पहुंचता है जिसको जवानी की उम्र कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने निकाह मुकर्रर किया। ये निकाह शुरू दौर से है, हमेशा हमेशा रहेगा और हर इंसान की ये ज़रूरत है। हर इंसान की ये ऐसी ज़रूरत है कि जिस ज़रूरत से मफर नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान में तीन चीज़ें ज़रूरत की रखी है, जिसको ख्वाहिशात के कबील से कहते हैं, एक खाने की ज़रूरत, एक पीने की ज़रूरत और एक वो ख्वाहिश जो बीवी से पूरी की जाती है वो ज़रूरत। खाने पीने की ज़रूरत बचपन ही से लग जाती है, पैदा होते ही लग जाती है, और बीवी के ताल्लुक की ज़रूरत ये जवान होने के बाद लगती है। अमूमन 15 साल में इंसान जवान होता है, फिर कुछ वक्त के बाद गुजर कर निकाह वगैरह का निज़ाम किया जाता है, और अहादीस मुबारक में कसरत से उसकी तरगीब दी गई। एक तरफ मर्दों को भी खिताब है कि वो निकाह करें, निकाह में देर न करें, निकाह पर खुशी का इजहार किया गया है, निकाह को अपनी सुन्नत करार दी गई है। अगर घर में बेटी हो तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर जवान होने के बाद निकाह उनका नहीं किया और वो किसी गुनाह को पहुँची तो उसका गुनाह माँ बाप पर आएगा। तौरात के हवाले से मज़मून लिखा हुआ है मिश्का शरीफ में, मन बलगत इब्नतु इस्नता अशर, सिर्फ 12 साल पर लिखा है। समझ में नहीं आता 12 साल की उम्र क्या होती है, लेकिन आज दुनिया जिस फवाहिशात की तरफ जा रही है और बेतहाशा भाग रही है, उसे अंदाज हुआ कि शरीयत ने जो 12 साल, और ये तो तौरात की बात नकल की जा रही है, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरात की बात नकल करें तो फिर वो इस्लाम की बात होगी, शरीयत मुतहरा की बात होगी। तो 12 साल पर मर्द, 15 साल पर, उसके बाद फिर ये ज़रूरत सामने आई जाती है। अब ऐसे हालात बन गए कि आदमी बस क्या बताएं, 15, 17, 18 साल की उम्र पर तो शादी का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। यूरोप ने और यूरोपी तहज़ीब ने जहन में बिठा दिया कि भाई जब तक आदमी कमाने के लायक ना हो जाए उस वक्त तक शादी ना करे, और बेटी जब तक डिग्रियां हासिल नहीं ना कर ले उस वक्त तक वो अपने आप को शादी के लायक ही नहीं समझती। अब इतनी डिग्रियां हासिल करती हैं कि मर्द भी वहाँ नहीं पहुँच पाता। 25-25 साल की उम्र हो गई, उससे भी आगे उम्र हो रही है, कहने अभी हमारी डिग्रियां बाकी हैं, वो डिग्रियां हासिल क्या, फिर बिगड़ियाँ हो जाएंगी। अब जब बहुत सारी डिग्रियां हासिल हो गई, अब लड़का ढूंढा जा रहा है, तो लड़के आजकल इतने चोर बन गए हैं पढ़ने के लाइन के, अलमान वाला फिर ना नंबर लाते हैं ना पास होते हैं, बहुत से तो पहले ही छोड़ देते हैं। क्यों, माहौल ही ऐसा बिगड़ चुका है, बिगाड़ पैदा हो चुका है, आवारा गर्दी उनका महबूब मशगला है। तो अब ढूंढ रहे हैं उस मेयार का लड़का का जो जितना उन्होंने डिग्रियाँ ली उसके मुताबिक मिले, वो मिलती नहीं है। फिर 2-4-5 साल और गुजर जाते। तो शादी की जो सही उम्र है, जज्बात की जो सही उम्र है, वही ख़त्म हो जाती है। आजकल ये हो रहा है, वरना पहले ज़माने में सीधी सादी बात, घर में अगर बहू आ गई तो उसे क्या चाहिए, तो रोटी और चाहिए भाई, 10 रोटी पक रही है 12 पक जाएगी। और बाप पर बोझ भी नहीं होता कि भाई ऐसा इतना सब है तो उसमें एक का इजाफा हो सही, उसे कुछ भी फर्क नहीं होता। लेकिन वो जो मुतालबात की एक लाइन चल पड़ी है, लड़कियां हैं तो उनके मुतालबात, लड़कियों के माँ बाप हैं उनके मुतालबात, तो इंसान भी सोचता है कि भाई कैसे उसको पूरा करें। तो गर्ज ये कि हर तरफ इस कदर बिगाड़ पैदा हो गया है कि ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि इधर 15, 17, 18 साल की उम्र हो और शादी कर दी जाए। लेकिन जब कभी भी कोई अच्छा मौका मिला है, अच्छा माहौल मिला है और वहाँ उन घरों के अंदर शादी हो गई 18-20 साल की उम्र में, तो माशाल्लाह वो घर महफूज हो गया, अमन व सुकून का गहवारा बन गया, घर में एक तराकी की आफियत बन गई। माँ बाप को बेटी के बारे में फिक्र होती है कि इसकी जल्दी शादी हो जाए ताकि हमारे सर से जिम्मेदारी अदा हो जाए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और ये कोई मामूली बात नहीं है। तो उनको भी सुकून मिलता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि बेटी ठिकाने लगी और एक जगह पर पहुंच गई, और जहां जाती उन लोगों के सुकून मिलता है, घर में एक फर्द का इजाफा हो गया, बरकत हो गई, घर में सहूलत हो गई, कामकाज में आसानी हो गई। तो गर्ज ये कि जब इस नीयत से सोचा जाता है तो दोनों तरफ राहत का माहौल बन जाता है। लेकिन जब ये बात नहीं है तो बाल जो कुछ बिगाड़ आ रहा है वो अपनी जगह पर जाए। तो इंसान की तबीयत में ये है कि निकाह हो, शादी हो, अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छे अंदाज से बयान किया कि जब निकाह हो तो फिर किस तरीके पर दोनों की मुआशरत होनी चाहिए, उसको जिस अंदाज से बयान किया है वो मैं अभी गौर कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बात डाली, या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। सबसे पहले तो ये बतला दें कि तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने एक ही नफस से पैदा किया, एक ही जान से पैदा किया, क्योंकि सबकी असल पहुँचती है बाबा आदम पर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हम सब के अब्बा जान हैं, और अब्बा भी हैं अल्लाह ने, हज़रत हव्वा को भी हज़रत आदम ही से निकाला। तो फिर एक ही नफ्स हुआ कि नहीं हुआ? एक ही नफ्स से मर्द भी है, एक ही नफ्स से औरत भी है, मिन नफ्स वाहिदा। इसका मतलब ये हुआ कि मर्द को ये सोचना चाहिए कि अगर मेरे साथ मेरी बीवी है तो मेरा ही नफ्स है, मेरी ही जान है, एक ही जान है, अलग कोई जान नहीं। जिसको कहते हैं कि क्या है, यक जान दो खालिद, यानी जिस्म दो है मगर जान एक है, रूह अलग अलग है लेकिन एक ही, जिस्म अलग अलग है मगर रूह एक ही है। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, एक ही नफ्स से पैदा किया। और फिर उसके बाद ये बात समझ नहीं आती तो आगे फिर फरमाया व खलक़ मिन्हा ज़ौजा, उसी एक नफ्स से जोड़ा भी अल्लाह ने पैदा किया। तो जोड़ा पैदा करके बता दिया कि तुम्हारा जोड़ा तुम्हारी नफ्स का और तुम्हारी ही गोया एक तरह का हिस्सा है, जूज है। लिहाजा जब इंसान ये सोचेगा कि मेरी बीवी मेरे ही बदन का एक हिस्सा है तो फिर उसके साथ वैसा ही मामला करेगा। अल्लाह ने इंसान को दो हाथ दिए, दो पैर दिए हैं, एक हाथ में दर्द होगा तो दूसरा हाथ उसका इलाज करेगा, उसकी मालिश करेगा। दाहिने हाथ में तकलीफ होगी तो क्या करेगा बोलो? विक्स लेगा बाएं हाथ में और दाएं हाथ पर मालिश करेगा। और बाएं हाथ में अगर जख्म हो गया, तकलीफ हो गई, तो फिर कहाँ किसको ढूंढेगा? भाई मरहम ढूंढा और दाहिने हाथ से उसको लगाया। ये है एक हाथ दो हाथ का आपस में ताल्लुक। दो पैर है अल्लाह ने दिए हैं, एक पैर में तकलीफ हो गई दूसरे पैर से काम लेगा, उसमें हो जाए इस पैर से काम लेगा। तो गर्ज ये है कि इस तरीके पर अल्लाह ताला ने मर्द को औरत को एक ही मिजाज और एक ही नफ्स से पैदा किया और उस पर हुक्म दिया कि इत्तकू रब्बकुम, अब अपने रब से डरो, अल्लाह के अहकाम को पूरे तौर पर अदा करो। अब जब मियाँ बीवी का एक जोड़ा बन गया तो उसके बाद फिर आगे एक और मज़मून फरमाया वाशरूहुन बिल मारूफ, कि तुम अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अल्लाह ताला तसल्ली दे रहे हैं, अल्लाह ताला सिफारिश कर रहे हैं कि अपनी बीवियों के साथ तुम्हारा मामला, तुम्हारी माशरत अच्छी होनी चाहिए। अब ये भी गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला मर्दों कह रहे हैं वाशरूहुन, जिस तरीके पर मर्दों कहा जा रहा है औरतों से भी खिताब हो सकता था। अल्लाह ताला कुरान में आयत नाजिल करते वाशिर नहुम बिल मारूफ, आशिर न मुअन्नस का सेगा है, यार ये सब उठा तो इनकी शादी हो गई गालिबन। मेरा ख्याल आपकी शादी हो गई है इसलिए आप सो रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे वाशिर, अल्लाह ये नहीं फरमा रहे वाशिर न हुम, ए औरतों तुम मर्दों के साथ अच्छी मुआशरत करो, बल्कि ये फरमा रहे हैं मर्दों को वाशरू हुन बिल मारूफ, ए मर्दों तुम औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। इसमें असल बात ये कहनी है कि मर्द जो है वो असल है मुआशरत गुजारने में, जिंदगी का तरीका गुजारने में मर्द ही असल होता है। मर्द जिस तरीके पर अपनी बीवी के साथ मुआशरत करेगा बीवी पर उसका ऐसा ही असर होगा जैसा आईना देखकर अपनी सूरत सामने आती है। तो फिर जैसा मामला आपका होगा वैसे मामला आपकी बीवी का आपके साथ होगा। अगर आपने मारूफ के साथ अच्छाई और भलाई के साथ मुआशरत नहीं इख्तियार की है तो फिर उसी का रिएक्शन होगा कि वो भी वैसे ही मामला करेगी जैसा आप मामला कर रहे हैं। अगर आप गुस्से हो गए तो उसको भी गुस्सा आएगा, आप नाराज़ हो गए वो भी नाराज़ हो जाएगी, आपने हुक्मदूली की वो भी हुक्मदूली करेगी। उमन ही होता है। तो चूँकि मर्द ही असल होता है घर बनाने में, ज़िंदगी को गोया सही ढंग से अदा करने में, इसलिए अल्लाह ने मर्दों को हुक्म दिया वाह शुरू हो नबिल मारो। और फिर अलग बात है कि अल्लाह ने आगे एक मौके पर ये भी फरमा दिया कि दोनों के एक दूसरे का हक है, दोनों एक दूसरे का हक अदा करें। वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिलमारूफ, मर्दों का भी औरतों पर हक है और औरतों पर भी मर्दों का हक है, दोनों का एक दूसरे पर हक है, दोनों एक दूसरे के हकों का ख्याल रखें। लेकिन यकीनन अल्लाह ने मर्दों को दर्जा ऊंचा दिया है तो वो अपने दर्जे के अतबार से उनके साथ वैसा ही सलूक और मामला करें। अमूमन आजकल ये हो रहा है, अगरचे उधर से भी शिकायत होती है बहुत सी जगह, वाकई औरतें ज़ालिमा होती हैं उससे इनकार नहीं, लेकिन कम होती है, कसूर अमूमन मर्दों का ही निकलता है। अगर मर्द अच्छे तरीके पर औरतों के साथ पेश आए तो कोई वजह नहीं है कि औरत गलत तरीके से अपने शौहर के साथ पेश आएगी। हाँ कभी कभी होगा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई औरतें टेढ़ी पसली से पैदा ही हुई हैं, इन निसा खुलकना मीन दिल आइन, और पसली भी ऊपर की पसली जो और टेढ़ी होती है, लिहाजा उनके साथ खैर ही का मामला करो। तो बता दिया कि उनमें कुछ न कुछ कजी है, कजी रहेगी, मगर उसका इलाज तुम्हारे हाथ में है, उसका इलाज तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम उनके साथ अच्छे तरीके पर पेश आओ। बस तौसो बिन निसाई खैरा, अल्लाह के रसूल फरमाते वसीयत कबूल करो तो उनके साथ अच्छा मामला करो। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जुम्मे से बेहतर इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर हो। खैरुकुम खैरुकुम लि अहली, और फिर फरमाया व अना खैरुकुम लि अहली, और मैं तुम में सबसे बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए, मैं भी अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता हूँ, लिहाजा तुम भी अच्छा सलूक करो। और कभी कभार अजवाज मुतहरात भी नाराज़ हो गई, कहते आयशा सिद्दीक़ा भी नाराज़ हो गई, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल से बुर्दबारी से काम लिया, उसका कोई एक्शन नहीं लिया, उसके मुकाबिल कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ज़र्ब हो हर्ब हो मार पिटाई हो, ऐसा कोई सलूक ऐसा मामला नहीं किया। नाराज़गी का इजहार ज़रूर हुआ है लेकिन उससे आगे कोई बात नहीं। एक किताब अभी मराकश गया था तो एक साहब नौजवान है आलिम, उन्होंने किताब लिखी अस्सब्र अल ज़ौजात वल हिल्म अलैहिन्न। देखिए मैं दिखाता भी नहीं, अपने पास छुपा के रखी। अस्सब्र अल ज़ौजात वल हिल्म अलैहिन्न, बीवियों पर सब्र करना और उनके साथ बुलदबारी के साथ रहना। और ऐसे बहुत से वाकयात दिखे, तो सबसे पहले वाकयात ने ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदा की कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ मरतबा अज़वाज मुतहरात से किसी बात पर उनकी मुतालिबन नाराज़ हो गए, लेकिन बाद नाराज़गी अपनी जगह पर रहती, थोड़ी देर की रहती, बाद में आप सबसे राज़ी हो गए। फिर और वाक़यात बयान किए। एक वाक़या उसमें बड़ा अजीब है। आज से 1000 साल पहले एक आलिम गुजरे, उनका नाम है काजी रियाज, मराकश के रहने वाले हैं, वहीं उनका इंतकाल हुआ। बहुत बड़े मुहद्दिस और आलिम हैं, उनकी किताब मशारिक़ुल अनवार भी और भी हदीस पर किताबें हैं, बेहतरीन किताब है। तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। उलमा जितने भी होते हैं वो किताब के दिलदादा होते हैं, किताब के आशिक होते हैं। जैसे आजकल नौजवान जो हैं मोबाइल के आशिक हैं, बीवी पास में होगी लेकिन छूटेगा ना मोबाइल, मोबाइल नहीं छूट रहा। तो ये किस्सा सुनाना चाहता हूँ। काज़ी रियाज़ रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि उनके करीब में किसी आलिम ने कोई किताब लिखी है, तो किताब का शौक़ होता है उलमा को। ये उनके पास गए और कहा, भाई मुझे आपने फलां किताब लिखी है, मुझे किताब पढ़ने के लिए दो। कहने लगे, अभी एक ही कॉपी है, एक ही नुस्खा है और मैं उसको नहीं दूंगा, ज़ाय हो गई, कुछ हो गया तो क्या होगा। इन्होंने इसरार किया कि बस एक रात को पढ़ने के लिए दो, मैं कल सुबह तुमको वापस कर दूंगा। अब बाल ये भी आलिम थे, उन्होंने ख्याल किया कि भाई ये एक ही रात के लिए मांग रहे हैं, सुबह मुझे वापस कर देंगे, तो किताब दे दी। किताब का शौक़ क्या होता है, इश्क होता है, बेइनी ऐसा जैसे लोगों को आजकल हो रहा है इश्क, जो जैसे मैंने अभी बताया। वो ले आई किताब रात के वक्त में, उसको देखना शुरू किया, उसमें ऐसे महव हो गए कि फजर की नमाज हो गई, फजर का वक्त हो गया, इतने महव कि फजर का वक्त हो गया और किताब भी पूरी हो गई। उधर बीवी साहिबा जो वो इंतज़ार कर रही है कि अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, वो रात किताब देखने गुजर गई। उन्हें बड़ा गुस्सा आया। अब ये फजर के लिए चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, पूरी रात जागे थे, नमाज पढ़ के आए, जरा देर सो जा, 2-3 घंटे के लिए सो गए, उसके बाद उठे। उठने के बाद बीवी से कहा, भाई कुछ खाने को हो तो दे दो। अभी ने कहा, बहुत अच्छा नाश्ता आपके लिए तैयार किया है, बहुत अच्छा नाश्ता आपके तबाख में रख कर ऊपर पूरा ढक्कन रख कर लाकर पेश किया। जब खोल कर देखा तो वो किताब जो लेकर आए उसे जला दी और जला कर उसकी राख जो है तबाख में रखी और वो पेश की। काज़ी रियाज़ सर पकड़ के रह गए, या अल्लाह मैं फुला साहब की किताब लेकर आया हूँ, एक ही कॉपी उन्हें लिख कर तैयार किया, अब कितना उनको रंज होगा। कुछ नहीं कहा, गए उनके पास, उनसे कहा कि भाई थोड़ी मोहलत मुझे और दे दीजिए, किताब में देखना चाहता हूँ। बल कहा ठीक है चलो, एक दिन की और मोहलत देता हूँ। वहाँ से वापस आए और उस किताब को बेआईनी ही जो रात भर देखी थी लिखना शुरू किया और दूसरी रात को उसे पूरा कर दिया। इतना कवि हाफजा लान दिया, एक ही मरतबा मुताला किया पूरी किताब का और उसको बेआईनी लिख कर दूसरे दिन ले गए उनके पास। आप किताब पढ़िए, पहले ये देखिए, ये बताइए कि आपने जो लिखा था उसमें कोई फ़र्क तो नहीं है। तो देखने लगे, देखने कहने कोई फ़र्क किसी तरह का भी नहीं है, पूरी बादशाह है। इतने बड़े ज़बरदस्त आलिम, इतना कवि हाफजा, लेकिन जरा देखे बीवी ने क्या मामला किया। तो ये 1000 साल से पहले का वाकया है जो आज भी उसी तरह सादिक आ रहा है। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, वो सारी रात किताब देखते थे। एक मतलब बीवी को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, इन हाज़िहिल कुतुब अशद्दु अलैया मिन सलासी ज़राइर, ये किताबें जो है मुझे 300 सौकन से ज़्यादा भारी है, तुम जो इसमें लगे हुए है। तो ऐसी आजकल जो है बीवियों को आपके मोबाइल पर गुस्सा आता होगा। हमारे नौजवान जो है बस वो मोबाइल में ऐसे फंसे हुए हैं गोया वो उनके लिए तो वो शोकन ही है, शोकन से कम नहीं है। अब समझो क्या क्या होना चाहिए। कुछ गलतियां हमारी भी हैं, हम अपनी आदत बदलें, हम अपना हाल बदलें। शिकायत होती है कि बीवियां ऐसी हैं, बीवियां ऐसी हैं, हम ही अपनी तवज्जो उन पर नहीं करते, तो फिर क्या होगा नतीजा। सबसे बड़ी और ज़रूरत की बात यह है, एक ख़ास बात नौजवानों के लिए कह रहा हूँ बल्कि सभी के लिए कह रहा हूँ, कि रात के वक्त अल्लाह ताला ने अता फरमाया सुकून के लिए। बीवियों को भी अल्लाह ताला ने अता फरमाया सुकून के लिए, रात भी सुकून के लिए, बीवियाँ भी। तो बीवियों के लिए भी कुछ वक्त ऐसा मखसूस होना चाहिए कि जिसमें आदमी सब कुछ काम छोड़कर उन्हीं को वक्त दे अपना। ये ज़रूरी है। 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2-2 बजे तक हम दूसरे काम में लगे हैं, और उसके बाद फिर जाहिर बात है वो दिन भर काम करके सो जाएगी, और फिर उसके बाद वो ना इसका ताल्लुक ना उसका ताल्लुक। तो बिगाड़ पैदा होता है हम ही से। अल्लाह हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। मैं बाटली में रहता था, कुछ नौजवान आते थे घर में, माशाल्लाह ताल्लुक था, तो चाय भी बनती थी घर में पीले। लेकिन जहाँ 10 बजे 10:30 बजे नहीं कि भाई आप मजलिस बर्खास्त है, आप ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, आप सब जवान हैं, आपकी बीवियों का हक है, वरना मेरे ऊपर सारी बदनामी आएगी। तो रुख्सत कर दिया। बहुत ज़रूरी है हम अपनी मईशत मुआशरा दुरुस्त करेंगे तो इंशाल्लाह घर का मुआशरा भी दुरुस्त होगा, वरना देख रहे हैं आज घर घर में लड़ाइयाँ हो रही है। तो इन लड़ाइयों में कुछ कसूर हमारा भी है, हम अपना कसूर ख़त्म करें, इंशाल्लाह उनमें भी मोहब्बत बढ़ेगी। हम तालीम करें, हम उनको बुज़ुर्गों के वाक़ियात सुनाएं, हम उनके साथ नरमी के साथ पेश आएं, आपस में एक दूसरे के मामलात को शेयर करें। मौलाना ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब दामत बरकात मुझे नक्शबंदी सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, मुस्तकिल उन्होंने कई किताबें लिखी हैं कि किस तरीक़े पर गोया घर में तरबियत की सूरत होनी चाहिए, ख़वातीन के साथ बीवियों के साथ किस तरह मुआशरत हो, मईशत हो, औलाद के साथ क्या मामला हो। और हमारे हज़रत शाह हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह के कई रिसाले इस पर हैं, छोटे छोटे रिसाले, कोई बड़े नहीं हैं, जिसमें है मतलब खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी, हुकूक़ रिजाल, हुकूक़ निसा के नाम से, और मुख्तलिफ़ किताबें। किताबों की पढ़ने की ज़रूरत है, हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं, और ये मोबाइल ने तो नाश मार रखा है हम सब का। तो सारा काम हम उसी पर कर रहे हैं, इधर उधर की खुराफात देखते हैं, जहन को बिगाड़ते रहते हैं, और न मालूम क्या हरकतें हो रही। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। माशाल्लाह कराची में कई किताबें इस लाइन की छप गई हैं, मंगवाइए, देखिए, उसमें मिसाली शोहर भी, मिसाली खाविन, मिसाली खाविन, मिसाली बीवी, मिसाली वालिद, और मिसाली माँ, इस तरीके की किताबों के नाम हैं, उनको पढ़ना चाहिए। बाप बनकर ही पढ़े, बाप को क्या करना चाहिए, माँ को भी पढ़ना चाहिए, माँ बनी है तो किस तरह माँ बनकर रहना चाहिए, खाविन बना है तो खाविन होकर किस तरह रहना चाहिए, बीवी बनी है, बीवी बनकर किस तरह रहना चाहिए। इन सब को जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह फिर एक सही मिजाज पैदा होगा, सही जहन पैदा होगा, हमारी कमी होगी वो नज़र आएगी, और उधर कोई दूसरी कमी होगी वो अपने इस्लाह करेंगे। अल्लाह ताला तमाम घरों में अमन सुकून पैदा करें, एक दूसरे के हक पहचानने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाह।